शांति। आप सभी बहुत प्यार से कहें ओम शांति। दिल से कहें ओम शांति। थोड़ा मुस्कुराकर खुशी से उमंग उत्साह से कहें नमस्ते। हाथ जोड़ा सबने? बिना हाथ जोड़े नमस्ते कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आपका मॉर्निंग गुड है? क्यों? ओम शांति है। अच्छा, मॉर्निंग गुड क्यों है? क्योंकि छुट्टी पर आए हैं। बहनों का मॉर्निंग गुड क्यों है? क्योंकि खाना नहीं बनाना है, नाश्ते की चिंता नहीं है, सब रेडीमेड है यहाँ पे, ठीक है ना? इसीलिए तो सब अच्छा ही लग रहा होगा। चलिए, बहुत अच्छा। गिरीश भाई का मॉर्निंग बहुत गुड है, क्योंकि मैं आप सब से मिल रहा हूँ और अगले एक घंटे तक हम आपस में कुछ बातों को समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन विषय को समझने से पहले मैं कुछ आपको कंडीशंस बताना चाहता हूँ, ठीक है? अगर मान्य होगा कंडीशन तो स्वीकार कर लेना, और अगर आपको लगता है थोड़ा डिफिकल्ट है तो आप बोल सकते हैं गिरीश भाई इतना डिफिकल्ट है, हम कैसे करेंगे ये, फिर हम उसमें थोड़ा सुधार भी कर सकते हैं, ठीक रहेगा? मैं यहाँ बैठ, पहला कंडीशन, गिरीश भाई यहाँ बैठ के बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, और आप वहां बैठ के तीन बार बोलिए, कितना धीरे बोल रहे हैं, थोड़ा जोर से तो बोलिए। एक मिनट, अरे ऐसा नहीं, थोड़ा उसमें लय तो होना चाहिए। गिरीश भाई यहाँ बैठ के बोलता रहे बोलता रहे बोलता रहे, और आप वहां बैठ के क्या कहा? सोते रहे सोते रहे। अच्छा सुन, वैसे भी सुनना और सोने में ज्यादा अंतर। आप मेरा अपमान कर रहे हो या सम्मान कर रहे हो ये समझ नहीं आ रहा है। आप लोग बोल रहे हो सुनना और सोने में ज्यादा अंतर नहीं है, अब ये सुनकर मुझे अच्छा लगेगा क्या, बताइए अंतर है या नहीं? तो अरे पहले क्यों बोला नहीं? पहले हमने दिल से जवाब दिया था और दूसरी बार हम दिमाग से जवाब दे रहे ताकि आपको बुरा ना लगे, ये गलत बात है, ठीक है? चलिए, मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, कंडीशन नंबर वन, वहां बैठ के सिर्फ सुनना नहीं, उसको समझना, उस पर विचार करना, उसको महसूसता की शक्ति पर परखना, ठीक लगे, फायदेमंद लगे, जीवन अच्छा बन सके तो स्वीकार कर लेना, और अगर लगता है कि इनसे हमारा जीवन नहीं सुधरने वाला है तो फिर उसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं भारत के लोगों की विशेषताएं जानता हूं। कंडीशन नंबर दो, मैंने भारत के लोगों की साइकोलॉजी को थोड़ा समझने का प्रयास किया। पता है भारत के लोग कैसे होते हैं? वो कहते हैं गिरीश भाई हम सुनते सब का है। क्या जवाब दे रहे हैं यहां पर, ये सब मुझे दिल दुखाने वाली बातें हो रही है। आप लोग है ना मुझसे भी ज्यादा जानकार है, आधा बात तो आप ही सुनाते हैं। मैंने कहा हम भारत के लोग सुनते सबका हैं, और जवाब आपने दिया करते अपना ही है। अब जब करना अपना ही है तो फिर यहां आकर के इतना मेहनत करके सुन के समझ करके फिर उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा आपका भी। हाँ जी, हाँ नहीं वही मैं कह रहा हूं, लेकिन इसमें ये सब बाधा बनता है, ठीक है? अच्छी बात को धारण करना, सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रखना, क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, ठीक रहेगा? तीसरा कंडीशन, आप लोग भी गिरीश भाई के साथ पार्टिसिपेट करना, पूछना। क्यों? क्योंकि मैंने भारत के लोगों की एक विशेषता देखी है, मुझे कुछ, मैं भी अपने आप को अच्छा ही फील करता हूं भारत में होकर, लेकिन ये विशेषताएं थोड़ा गड़बड़ कर जाती है। जब यहां पर इस मंच से कोई भी बहन या भाई आपको कुछ अच्छी बात बताते हैं ना, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां से कहूं कि गुस्सा नहीं करना आज से, ठीक है, मान लो, वैसे तो मैं गुस्से पर नहीं ज्यादा बात करूंगा आज, मान लीजिए कोई कहता है इस मन से कि गुस्सा ठीक नहीं है और गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो पता है भारत के लोग उसको कैसे उसको हैंडल करते हैं? जब भी अगर मैं यहां से कहूं गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो हम सब पता है ऊपर ऊपर से ना हाँ अब बोल रहे हैं तो हाँ हाँ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन पता है अंदर क्या चलता है? बताऊं कि रहने दो, बता दू पहले माताओं का बताऊं कि भाइयों का बताऊं? लेडीज फर्स्ट, माताओं का पहले बता दे। अगर यहां से गिरीश भाई कहे कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो हमारी माताएं और अंदर अंदर पता क्या सोचती हैं, तू है ना हमारे घर आ जा एक बार, सासू मां के दर्शन मात्र से तेरी शांति भंग हो जाएगी। अरे कहां की शांति रे, तू हमारे घर में आके हमारे बच्चों को आधा दिन हैंडल करके बता बिना गुस्सा किए, क्योंकि यहां से कहना बहुत, आप लोग है ना हमेशा मेरा इंसल्ट ही कर रहे हो आधा से मेरा ज्यादा जवाब तो आप ही दे रहे हो, ठीक है ना, आप ही करा लो क्लास फिर। यहां से कहना, मंच से कहना बड़ा आसान है, लेकिन आपकी मान्यता है कि प्रैक्टिकल करना बहुत मुश्किल है, तो फिर क्या फायदा इतना यहां से सुनकर, क्योंकि आपको लगता ही है वो डिफिकल्ट है। इसीलिए एक छोटा सा कंडीशन है, अगर आपको लगता है गिरीश भाई जो भी कह रहा है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम नहीं कर सकते, ऐसा थोड़ी ना होता है जिंदगी, ऐसा थोड़ी ना जिया जाता है, आप लोगों के लिए संभव है वाइट वाइट, क्यों? क्योंकि ना आपको घर है, ना बच्चे हैं, ना बिजनेस है, ना कारोबार है, ना संबंध है, बस आपको तो बस एक ही काम करना है आश्रम में बैठ के, ओम शांति ओम शांति। और हमको कितना प्रॉब्लम है, घर को संभालो, परिवार जनों को संभालो, बिजनेस को संभालो, धनार्जन करो, यस और नो, लाइफ को सेटल करो, फ्यूचर को सिक्योर करो, ये सब करते हुए ओम शांति थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, आप है ना इसको नहीं करना, इमीडिएटली खड़े होकर कहना गिरीश भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इस परिस्थिति में हम कैसे शांत रहे वो बताइए, ठीक रहेगा? और भाइयों के बारे में तो बताया ही नहीं, वो भी बता दो। हाँ भाई, जब मैं कहता हूं ना गुस्सा नहीं करना चाहिए, तो वो कहते हैं और अंदर क्या सोचते बता, हमारे दुकान में आ जाओ एक बार, हमारे ऑफिस में आकर आधा दिन काम करके बता दो। अरे सामने वाला तो मानता ही नहीं है प्यार से, जब तक गुस्सा ना करे वो सुनता कहां है, काम होता कहां है प्यार से बताइए, प्यार से काम होता है क्या? हां ना हमको क्या पता, होता है या नहीं होता है? तो फिर गुस्सा देखा वहां से किसी ने कहा नहीं होता, वो छोटू कह रहा है नहीं होता क्योंकि बेचारा पीड़ित है, उसकी मां उसको हमेशा गुस्से से ही काम करवाती है, बोलता कहां से होता है। बड़ों एक चीज मैं बताऊं, ये बड़े लोग जो है ना बहुत अच्छी तरह झूठ बोलते हैं, अच्छे अच्छों को समझ में नहीं आता कि झूठ बोल रहा है, ये जो छोटू है ना एकदम दिल की बात बोलते है, वो बोल रहा कहां होता है काम, मम्मी तो हमेशा मेरे को चिल्लाती है डांटती है। तो हम यहां पर चर्चा करेंगे, ठीक है, मैं यहां बैठ के बोलता रहूं, और भारत के लोगों की एक और विशेषता मैंने देखी है, बुरा तो नहीं लगेगा, पहले बोलिए हमने आपको माफ किया, कितने कम लोग बोल रहे हैं, पूरी सभा बोले, बहुत अच्छा। भारत के लोगों की विशेषता है कि वो आंखें खोल के भी सो सकते हैं, समझ में किसके लिए ताली बजा रहे हैं आप लोग, आप कमाल, सब उल्टी बात पे ही बात लोग ताली बजाते, मेरे लिए ताली बजाया या खुद के लिए बजाया, मेरे लिए, अच्छा अपने लिए, हाँ तो ठीक है, आंखें खोल के क्यों सोते पता, ताकि मुझे पता भी बुरा भी नहीं लगे कि भाई कोई सो रहा है, और इतने स्मार्ट हैं भारत के लोग, ऐसे ऐसे करके सुनते। मेरा एक छोटा सा अनुरोध है, प्लीज आप उस पर गहन चिंतन करिए। आप इतना मेहनत करके दिल्ली छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, कारोबार से छुट्टी लेकर आए हैं, अपना समय इन्वेस्ट किए हैं, ब्रह्मा कुमारी संस्था आपके लिए कितना मेहनत करके आपका प्रोग्राम, कितने लोग इसके पीछे, आपका खाना पीना रहना पानी गर्म पानी ठंडा पानी चाय नाश्ता, ये सब आपके सर पर बोझा नहीं होना चाहिए। लेन देन चलता है ना, है कि नहीं, सेवाएं लेंगे तो उसका बोझा नहीं चढ़ना चाहिए, उसको 100% रिटर्न। आपके घर वाले जो आपको यहां भेजने पर अग्री किए, आपकी गैर हाजिरी में वो आपकी दुकान को संभालेंगे, आपको घर को संभालेंगे, आपने उनको तो रिटर्न देना पड़ेगा ना, वो रिटर्न है खुद थोड़ा सा टर्न होकर यहां से जाना, थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बेहतर। अभी आप अच्छे हैं बेहतर हैं, ऐसा नहीं है कि आप बुरे, लेकिन और अच्छा और उसमें बढ़ोतरी और चार चांद लग जाए, आप और मृदुभाषी बन जाएं, और आप शक्तिशाली बने, और आप यहां से पावरफुल बने, ना डरें ना डराएं, ना घबराएं ना रोएं ना रुलाएं, ना गुस्सा करें ना गुस्सा दिलाएं, इन सब बातों को थोड़ा सा हम समझते हैं। आपको मेरी बात प्रैक्टिकल नहीं लगे तो क्या करेंगे, तुरंत आप मुझसे कहना गिरीश भाई, कभी भी आप मुझे रोक सकते हैं, ऐसा नहीं कि कार्यक्रम के बाद में ही आपको बात करनी है, तुरंत आप बोल सकते हैं, हाथ ऊपर उठाइए, मैं शांत होकर आपकी बात सुनूंगा, ठीक है, ठीक रहेगा, हम चर्चा करेंगे, कोई मैं लेक्चर नहीं दूंगा आपको। इसका मतलब ये है कि मैं ही करेक्ट हूं, मैं ही राइट हूं, मुझे ही सब ज्ञान है, मैं ही सब जानता हूं और आप कुछ नहीं जानते, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम चर्चा करेंगे, ठीक रहेगा, ओके। आज का जो हमारा विषय है वो है चॉइसेस इन चैलेंजेस। चॉइस को हिंदी में क्या कहते हैं, वो तो चैलेंजेस चुनौती, चॉइस पसंद। हाँ, आप दुकान में जाते हैं ना, आप अपने चॉइस की ड्रेस खरीदोगे, चॉइस का पेन, बहुत सारा ऑप्शन होता है, उसमें से द बेस्ट आपको जो पसंद आएगा वो आप चूज करोगे। तो हम दो, आज का जो चर्चा है उसको दो भागों में चर्चा करेंगे, पहले हम चुनौती के बारे में समझ लेते हैं, फिर हम इन चुनौतियों में हमारे पास क्या ऑप्शन है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपको पूछूं आपके जीवन में चुनौतियां हैं, इस चुनौती को मैं थोड़ा और इजी कर देता हूं, ठीक है, चुनौती थोड़ा पॉजिटिव टर्म है, उसका थोड़ा एक नेगेटिव टर्म यह है कि प्रॉब्लम्स, चुनौती है मतलब प्रॉब्लम है हमको लाइफ में, ठीक है। हां जी, कृपया करके अपने मोबाइल फोन क्या करें, क्या करें, हां क्या छोटू कितना, ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बोलता ऑफ और सिर को जा रहा है, साइलेंट करेंगे ना तो भी वो घर घर करता रहेगा, ऑफ इज अ बेटर ऑप्शन, ठीक है ना। हाँ, या तो साइलेंट करो या ऑफ करो, ऐसा मैं नहीं कहता, ऐसा आप कहते हैं, मैंने तो कहा ही नहीं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूं, कृपया करके अपने मोबाइल फोन को साइलेंट में या ऑफ मोड में ना रखें, जब मैं ऐसी ऐसी बातें करता हूं ना तो लोग ऐसे घूर के देखते हैं मुझे कि यह नॉर्मल नहीं लग रहा है, ठीक है ना, यह कोई दूसरे ग्रह से आया हुआ है, अरे आज तक तो हमने यही सुना था ऐसे कार्यक्रमों में, क्या करो, स्विच ऑफ करो या फिर साइलेंट रखो, और गिरीश भाई कहता मत करो। सवाल पूछूं, आपको क्यों लगता है कि साइलेंट करना चाहिए या स्विच ऑफ होना चाहिए? अगर ऐसा नहीं होगा, किसी भाई या बहन का मोबाइल बज जाता है तो क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, ठीक है, डिस्टर्बेंस ही होगा, ये डिस्टर्बेंस भी एक चुनौती ही है इनके द्वारा दी गई है, क्योंकि इनका बज रहा है, मैं तो भाई ध्यान पूर्वक सुनना चाहता था, अब ये भाई या बहन बजा रहे हैं, अब ये हमारे जीवन का क्या बन गया, चुनौती नहीं प्रॉब्लम। اب یہ گھر والے بھی ہو سکتے ہیں, باہر والے بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ ایک پرابلم ہے. اب اس پرابلم کی وجہ سے ہم کو کیا ہو رہا ہے, ڈسٹربنس ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. سوال پوچھوں, تھوڑا سوچ سمجھ کے جواب دیجیے گا. یہ موبائل میں سے جو آواز نکلتا ہے نا, یہ تو سنگیت ہے. میں جب چھوٹا تھا نا تو ہمارے گھر میں لینڈ لائن فون ہوتا تھا, اس میں سے صرف ایک ہی سنگیت نکلتا تھا اور بڑا بورنگ ہوتا تھا, مزہ ہی نہیں آتا تھا. ٹرن ٹرن ٹرن. آج تو 200-300 لوگ 300 ویرائٹی کا سنگیت, کسی کا بھکتی سنگیت, کسی کا ہنومان چالیسا, کسی کا بالی ووڈ, کسی کا ہالی ووڈ, کسی کا پاپ, کسی کا راک, کسی کا انسٹرومینٹل. یس اور نو؟ سوال پوچھو, ڈسٹربینس کہاں ہے؟ یہ تو سنگیت ہے. اور ایک اور پرشن پوچھتا ہوں, منش نے موبائل فون بنایا, منش نے موبائل فون بنایا منش کے بہتری کے لیے یا ڈسٹربینس کے لیے؟ بولو چھوٹو. ہاں کیا بات ہے, یہ بچہ بہت اسمارٹ ہے, کتنا کلیئر ہے, بولتا ڈسٹربینس. سوال پوچھو, تم کتنا دیر کھیلتا ہے موبائل میں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, اچھا بچہ ہے. منش نے موبائل فون کا نرمان یا اس کا بنایا, مینوفیکچرنگ منش کے فائدے کے لیے ہے یا نقصان کے لیے؟ فائدے کے لیے. اور آپ یہاں بیٹھ کے کہہ رہے ہو ڈسٹربینس. ارے یہ کوئی چیز بتائے, یا تو ڈسٹربینس ہے یا پھر فائدہ ہے, دونوں بھی ہے. کیسے؟ الگ الگ ستھان پر الگ الگ. کمال ہے. بولیے بھائی صاحب. سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بہت اچھا, اس پر بھی ہم تھوڑا چرچا کریں گے. یہی سب ہے نا, گڑبڑ ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں, پتا ہے پرابلم کہاں پر ہے؟ سب سے بڑا چنوتی اس بات کا ہے کہ ہم چنوتی کو سمجھتے نہیں ہیں کہ چنوتی ہے کیا اور چنوتی ہے کہاں. سوال پوچھوں, ہم 200-300 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, ایک بھائی بہن کا غلطی سے موبائل بجتا ہے, مان لیجئے غلطی سے, ان کو اچھا نہیں ہے کسی کو ڈسٹرب, ان کو لگا کہ میں سائلنٹ کر کے آیا ہوں لیکن یہاں بچ گیا, دھیان پر نہیں تھا کہ میں نے اس کو سائلنٹ نہیں کیا, اور ترنت وہ بھائی بہن اس کو نکال کر کے اس کو سائلنٹ کرنے کا پریاس بھی کرتے. مان لو اس میں 10 سیکنڈ وہ بچتا رہتا ہے, یہ 10 سیکنڈ کسی بھی بھائی بہن کا غلطی سے, ان کا کوئی بھاو نہیں ہے کسی کو ڈسٹرب کرنے کا, غلطی سے موبائل بچتا ہے. ہم 300 لوگ یہاں بیٹھے ہیں, کسی ایک ویکتی کا موبائل غلطی سے بچتا ہے, باقی 299 لوگوں کا یہ بجتا ہے. یس اور نو؟ سوال پوچھوں, ڈسٹربینس کہاں ہے, یہاں ہے یا یہاں ہے؟ چنوتی یہاں ہے یا یہاں ہے؟ پرابلم یہاں ہے یا یہاں ہے؟ آپ لوگ بہت اچھے ہیں, آپ کو اتنی بات جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. تو سوال پوچھوں, میرا ریکویسٹ ہے کرپیا کر کے اپنے موبائل فون کو سوئچ آف یا سائلنٹ موڈ میں نہ رکھیں, چھوٹا سا ریکویسٹ ہے. اسی کے لیے آپ کو اور مجھے یہاں بلایا گیا ہے, اگلے آدھا پون گھنٹے کے لیے کرپیا کر کے اپنے من کو سائلنٹ موڈ میں رکھیں. وہ کسی کا کتنا بھی بجے لیکن میرا نہیں بجے گا, کیونکہ کسی اور کا موبائل فون پر میرا نینترن اور کنٹرول اور ادھیکار نہیں ہے, لیکن مجھے میرے اندر کے بجنے پر سمپورن نینترن کنٹرول اور ادھیکار ہے. دکھ کی بات یہ ہے, اجانتا کی بات یہ ہے کہ ہم کو ہمارے اوپر جو کنٹرول ہے اس کو نہیں کچھ کرنا ہے, لیکن دوسروں کو ٹھیک کرنا ہے جس پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے, اس کو دکھانا ہے. تو آپ کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ تو بہت اچھے ہیں, آپ تو اتنا جلدی بات سمجھ جاتے. سوال پوچھوں, میرے جیون میں میرا پرابلم کا کارن موبائل فون؟ छोटू तो मम्मी का डायलॉग नहीं बोल, अपना बोल, क्योंकि मम्मी के लिए तेरा मोबाइल खेलना इज अ प्रॉब्लम। मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, हाँ जोर से बोलिए मैं, वो सब बंद नहीं बोलिए, सिर्फ मैं बोलिए, ठीक है। एक बार रिपीट करते हैं, मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, क्या बात है, मेरे जीवन में मेरा क्रोध का कारण, मेरे जीवन में मेरा डिस्टर्बेंस का कारण, थोड़ा जोर से बोलेंगे दिल्ली तक आवाज जाना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही होता ना, वो कहीं कहीं प्रदर्शनी करते हैं ना, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली तक सुनाओ, सरकार को सुनाओ, ऐसे ही थोड़ा दिल्ली तक आपके घरों तक आवाज जाना चाहिए, ठीक है। मेरे जीवन में मेरा दुख टेंशन प्रॉब्लम का कारण, काश आपके घर वाले सुन पाते, आपका बच्चा दो नारियल तोड़ता मंदिर में जाकर, मत्था टेक कर कहता भगवान जी सुन लिया मेरी प्रार्थना, मेरी मम्मी पहली बार अक्कल की बात कर रही है, नहीं तो घर जाकर हम माता पिता चालू हो जाते, तुम लोगों की वजह से, तेरी वजह से, तू सुनता नहीं है ना, उठता नहीं है ना, पढ़ता नहीं है ना, खाता नहीं है ना। ये सोच समझ के बोलिएगा, मेरे बहाव में नहीं बोलिएगा। जो यहां बोल रहे हैं ना, वो ही घर में भी जाके बोलना। आपको माफी चाहता हूं, कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे बारे में, सोच टकलू तू बहुत स्मार्ट है, तू हमसे उल्टा हमसे ही बुलवा रहा है कि हम ही प्रॉब्लम है। आप लोगों ने सोने और सुनने को एक किया था ना, उसका बदला तो जरूर लूंगा, ठीक है ना। क्या बदला लेना है, मेरे जीवन में बदले की भावना भी मेरा क्रिएशन है, और जो जब तक खुद अपने अंदर की इस भावना को, इस क्रिएशन को, इस विचार को, उसकी क्वालिटी कंट्रोल चेक नहीं करेगा ना, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम सदा जीवन में चुनौतियों से, संघर्षों से, विघ्नों से, तकलीफों से, समस्याओं से घिरे रहेंगे, और हम लाख जतन भी कर लें हम उससे उभर नहीं पाएंगे, और सदा कंप्लेंट मोड में रहेंगे, सदा आप मेरे पास आते रहेंगे, आज भी आएंगे, कल भी आएंगे, 50 साल के भी बाद आएंगे, गिरीश भाई क्या करूं, बहुत प्रॉब्लम है, क्या करूं, बहुत प्रॉब्लम है। पता है क्यों? क्योंकि उस प्रॉब्लम का कारण, हाँ ये मुझे सुधार रहे, ऐसे नहीं करो, ऐसे करो। एक बार मैं गुजरात में प्रोग्राम, अभी अभी गुजरात से आया हूं प्रोग्राम करके, वहां वो गुजराती लोग बहुत अच्छे होते हैं, मैंने उनको कहा जोर से कहना, उन्होंने कहा हां, मैंने बुलंदी के साथ कहा मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, किसी ने हाँ नहीं, आपको तो पता है उन्होंने कुछ कहा ही नहीं। अब मैं नहीं कहना चाहता था, मैं उनसे बुलवाना चाहता था मैं, और वो तो शांत बैठे थे, तो मैं बोलना नहीं चाहता था, तो मैंने इशारों की, मेरे को लगा इनको समझ नहीं आया होगा, मैं इशारों की भाषा से हाथ को छाती में रखकर सिर झुका करके कहा कि मतलब मैं, तो जैसे ही मैंने सिर झुकाया ना, सब लोगों ने एक साथ कहा आप, मैंने कहा मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण मैं, उन्होंने कहा आप ही हो, बस बस खत्म करो अभी निकलो यहां, मैंने कहा आप नहीं मैं बोला आप ही हो, इतना कंफ्यूजन छा गया था, समझ ही नहीं आ रहा था कौन है दुख का कारण, आप या मैं। तो दोस्तों सवाल पूछो, सुधरना किसको है? ये भाई लोग ना बहुत स्मार्ट है, इतना देर से मैं बोल रहा प्रॉब्लम कौन है, प्रॉब्लम कौन है, मैं, और जब मैंने कहा सुधरना किसको, कहा हम, अरे इन्होंने अपनी पत्नी को भी साथ में ले लिया, वो भी प्रॉब्लम है, साथ सुधरेंगे, सुधरना किसको है, मुझे, वो हम में भी किसी को नहीं शामिल करना। हाँ जी, हाँ मुझे सुधरना है। सबसे बड़ी चुनौती इस संसार में, हर प्रॉब्लम का जड़ का कारण, मेरी गलत सोच, मेरी गलत वृत्ति, गलत एटीट्यूड। और इसी को अगर हमने समझ लिया ना भाइयों और बहनों, बड़े बड़े गर्व के साथ मैं कहता हूं, आधा से ज्यादा समस्या ऐसे करके सॉल्व हो जाएगा, बशर्ते अगर मैं ये समझूं कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है इसका कारण मैं स्वयं हूं। ठीक है, तो चुनौती समझा, चैलेंज इज नॉट एक्सटर्नल, मेरे लाइफ में मेरी चुनौती मेरा प्रॉब्लम का कारण मेरी पत्नी नहीं है, मेरे बच्चे नहीं हैं, सासू मां नहीं, उनका नाम लेता हूं तो सांस चढ़ जाता है, ठीक है, सासू मां नहीं है, बहू नहीं है, कस्टमर नहीं है, दुकानदार नहीं है, कॉम्पिटिटर नहीं है, सरकार की पॉलिसीज नहीं है, मौसम नहीं है, ये सब सत्य है। अभी क्या कर सकते बताओ, सत्य ही है ना, मेरा बेटा पढ़ता नहीं है दसवीं बोर्ड में, 24 घंटे वो टीवी और मोबाइल में बैठा है। अब मैं कितना उसको समझाऊं, कितना उसको बताऊं, फिर भी वो नहीं सुनता। मेरी मां को डॉक्टर ने कहा है कि उनको थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर है। अब क्या सत्य है भाई, अब सामना तो करना ही पड़ेगा, ट्रीटमेंट तो कराना ही पड़ेगा, वो चुनौती है, प्रॉब्लम है। एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सत्य है कि मेरी मां की तबीयत खराब है, सत्य है कि मेरा रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म वेटिंग लिस्ट ही रहा है, कंफर्म ही नहीं हुआ है, सत्य है कि मेरे को भी थोड़ा पीठ दर्द है, सत्य है कि मैं अपनी इच्छाओं को अपने गोल्स को जिस फास्ट गति से प्राप्त करना चाहता हूं वो नहीं हो रहा, मेहनत कर रहा हूं लेकिन नहीं हो रहा, क्या सत्य है, रिजल्ट हर चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है, यस और नो। इन सब सत्यताओं को चेंज करिए आज से आपकी भाषा को, इन सब प्रॉब्लम नहीं, ये सब सत्यताओं को, ये सब सत्यताएं मेरे जीवन में प्रॉब्लम का शेप, प्रॉब्लम का रंग, प्रॉब्लम का क्या बोलते आधार तब बनते हैं जब मेरे में मुझ में इन सत्यताओं को सामना करने की ताकत, पावर, क्रिएटिविटी, सॉल्यूशंस नहीं रहता है तो ये प्रॉब्लम बन जाते हैं, है सत्य। लेकिन जो लोग इन सत्यताओं को सामना करते हुए, उसको हैंडल करते हुए, उसको फेस करते हुए आंतरिक शक्तियों से, कॉन्फिडेंस के साथ, पावर के साथ, उन प्रॉब्लम को मुस्कुराहट के साथ, जो होगा देखा जाएगा, आपको दीदी कह रहे थे ना लेट गो करो, सोच सोच के परेशान रहकर फायदा नहीं है। एंड इफ यू हैव दैट टेम्परामेंट, द करेज, द गट्स, द डिटर्मिनेशन, द पावर टू फेस द चैलेंजेस ऑफ योर लाइफ हेड ऑन, then that reality is not a problem, that is a part of life. है जिंदगी है तो समस्याएं तो आएंगी, सत्यता है हर चीज मेरे अनुरूप ही हो ऐसा कोई गारंटी है क्या? जैसा मैं चाहूं वैसा ही हमेशा हो, ऐसा गारंटीड है क्या? नहीं है। तो नहीं हो रहा है ना, तो कोशिश करूंगा ना, प्रयास करूंगा ना, मेहनत करूंगा ना, लेकिन रोऊंगा नहीं, परेशान नहीं होऊंगा, दुखी नहीं होऊंगा, डिप्रेशन में नहीं चले जाऊंगा, हताश नहीं होऊंगा। ये हताश, डिप्रेशन, रोना धोना, ये किसने क्रिएट किया? तो मेरे जीवन में मेरा दुख का कारण, गुड न्यूज बताऊं, जोर से कहिएगा, बुलंदी के साथ कहिएगा और सचमुच खुशी से कहिएगा, मेरे जीवन में मेरे खुशी का कारण, क्या बात है। और जब मैं ही मेरे जीवन में खुशी का कारण हूं या दुख का कारण हूं तो प्लीज बताइए, जीवन की किसी समस्या में एक साधारण बुद्धिजीवी, एक साधारण विवेकशील व्यक्ति, इन दोनों में समस्या, प्रॉब्लम, रियलिटी जो भी है, अगर दो ही चॉइस है, अब मैं चुनौती से चॉइस में आ रहा हूं, किसी भी चुनौती, किसी भी सत्यता, किसी भी सिचुएशन ऑफ लाइफ में मनुष्य के पास सिर्फ दो ही चॉइस है, तीसरा चॉइस ही नहीं है। अगर सामना करना ही है, या तो रो के, परेशान होकर, दुखी होकर, हताश होकर, डिप्रेशन में जाकर सामना करो, या फिर मुस्कुराकर, खुशी से, आनंद से, शांति से, अरे डट करके, हिम्मत से सामना करो। सवाल पूछूं, ये दोनों में कौन सा चॉइस आपको ठीक लगता है? खुश होकर ना। प्रश्न पूछूं, तो करते क्यों नहीं? हाँ जी, क्या चीज, कौन कह रहा है? वैरायटी, हाथ ऊपर उठा, वैरायटी चाहिए ये बहन जी को ना, दुख की भी वैरायटी चाहिए, ऐसा सुख और दुख की दोनों की वैरायटी चाहिए, तो माताजी के द्वारा आप सबको थोड़ा सा ये जो कंफ्यूजन है ना, सुख और दुख की वैरायटी चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालता हूं। सोचना स्वीकार नहीं करना। आपका बेटा दसवीं कक्षा में पढ़ता है, नवीं कक्षा तक वो हमेशा अव्वल नंबरों से उत्तीर्ण हुआ है, ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, सफल रहा है, राइट? ऐसा ही है आपका बच्चा, बहुत अच्छा है, सिंसियर है, ऑनेस्ट है, दिल से पढ़ाई करता, मेहनत करता, अभ्यास करता है और हमेशा अपने क्लास में उत्तीर्ण आता है, नंबर वन रैंक। और हम माता पिता गर्व करते हैं कि हमारा बच्चा कितना लायक है, कितना मेहनती है। वो आकर आप माताजी को कहता है, मम्मी लाइफ में वैरायटी होना चाहिए, दसवीं कक्षा में मैं एक बार फेल हो जाता हूं तभी मजा आएगा। माताजी चलेगा क्या? हेलो, सफलता इज एन ऑलवेज फिनोमिना, लेकिन जीवन में सुख दुख चलता है, ये आपका मनगढ़ंत कंसेप्ट है, ये सत्य नहीं है। सवाल पूछूं, सेफ्टी सदा होना चाहिए कि समटाइम्स? आहा, क्या क्लैरिटी है। कभी कभी माताजी एक्सीडेंट चलता है क्या? होता है, गलती होता है, करते हैं, वो बात अलग है, मान्यता क्या है? सदा होना चाहिए, और सदा के लिए हम प्रतिबद्ध होते, और जो लोग उसमें भी प्रतिबद्ध नहीं होते, जीवन को बड़ा लूजली लेते हैं, वो फिर ना सीट बेल्ट पहनेंगे, ना हेलमेट पहनेंगे, फिर तेज गति से चलाते हैं। यू नो व्हाई? बिकॉज दे डोंट वैल्यू लाइफ, ना खुद का, ना मेरे मरने के बाद मेरे पीछे रोने वालों का भी वो चिंतन नहीं करते। और ये आज हमारे नवयुवकों का मान्यता है, पता है क्यों? क्योंकि हम माता पिता ने उनको गलत सिखाया है कि लाइफ इज रात और दिन का खेल है, सुख और दुख का खेल है, खुशी और दुख का खेल है, सब गड़बड़ है। पता है ब्रह्मा कुमारी क्या मानता, ईश्वर पिता परमात्मा क्या कहता? जीवन सदा सुख। उसी के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हो। उदाहरण दो, मेरा जो बड़ा वाला बेटा है ना, उसने कहा, पापा मुझे ड्राइविंग लाइसेंस, उस एज हो गया है, 18 से ऊपर हो गया हूं, मैं कॉलेज जाता हूं, मुझे आपकी फोर व्हीलर कॉलेज लेकर जाना है, दिखाना भी है ना सबको कि मेरे पास कार भी है, पापा के पास कार भी है, दोस्तों को बिठाएगा, जो भी उनका नॉर्मल है। मैंने कहा ठीक है, तो अप्लाई कर। बोला, पापा आपको तो ट्रैफिक कमिश्नर की पहचान है, आप उनको जानते हो, थोड़ा सिफारिश कर दो। मैंने कहा बिल्कुल कर देता हूं। मैंने तुरंत पाटिल साहब का फोन नंबर लगाया, पूरे मुंबई के वो ट्रैफिक कमिश्नर है, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हमने बहुत कार्यक्रम किए उनके साथ, इसीलिए वो जानते हैं मुझे। तो मैंने कहा, सर मेरा बड़ा वाला बेटा है, वो जरा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है, थोड़ा आप देख लें। उन्होंने कहा बिल्कुल करेक्ट। उन्होंने, मैं जहां रहता हूं नेहरूल नवी मुंबई में, वहां के लोकल आरटीओ ऑफिसर को फोन किया, बोला ऐसे ऐसे एक भाई है, उनका बेटा है, उनका फलाना नाम है, वो आकर के अप्लाई करेगा, आप देख लेना। ठीक है। पता है वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने क्या किया? हर छोटी छोटी बात, इतना खतरनाक खतरनाक डिफिकल्ट डिफिकल्ट सवाल पूछा मेरे बेटे को कि वो हमेशा रिजेक्ट होता गया। 6 महीने के बाद मेरे बेटे को पता चला कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलने के पीछे का कारण उसका बाप है, क्योंकि मैंने ट्रैफिक कमिश्नर को क्या फोन करके कहा था पता है? मेरे बेटे को ना फूक फूक कर ट्रैफिक रूल्स, नियम कानून, जब तक संपूर्ण रीति से उसको समझ में नहीं आएगा ना, उसको ड्राइविंग लाइसेंस देना नहीं। सवाल पूछूं, अच्छा बाप हूं या नहीं? क्या वो तो आप अपने लिए बोल रहे हैं, बेटे को पूछो। पता है वो आकर कहता है, आपकी वजह से नहीं मिल रहा मुझे ट्रैफिक लाइसेंस, क्योंकि वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर बाकी सबको ऐसे ही पास कर देता है, जैसे उसको पता चला ना, वो गिरीश का बेटा है, बोला हाँ ये इसका मतलब क्या है, उसको पता ही नहीं उसका मतलब क्या, बोला पढ़ गया। 2 साल लग गए मेरे बेटे को ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में, और मैंने क्या महसूस किया पता है? मेरा बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई इतना सीरियसली नहीं पढ़ रहा था जितना वो ट्रैफिक की पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि उसको उसको गाड़ी लेके कॉलेज जाना, दोस्तों को दिखाना, शो ऑफ करना, दैट वॉज मोर इम्पोर्टेंट। और जिस दिन 2 साल के कड़ी मेहनत के बाद, सवाल पूछूं, जब वो ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने उसको ड्राइविंग लाइसेंस दिया ना फाइनली 2 साल के बाद, जब उसको सब आने लगा, तो ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने वो बेटे को कहा, बेटा हम आपसे क्षमा चाहते, हमने आपको बहुत परेशान किया, आपके पिताजी और मेरे कारण आपको ना गुस्सा आ रहा होगा, لیکن ہم آپ کی بھلائی کے لیے ہم نے ایسا کیا. یہ آپ کو آج پتا نہیں چلے گا, بھوشیہ میں پتا چلے گا. جو آپ نے 2 سال کی محنت کی نا, وہ زندگی میں کتنا فائدہ مند ہوگا. اسی لیے بیٹا برا مت فیل کرنا, ہم آپ کی بھلائی کی, آپ کی سرکشا کے لیے ہم نے ایسا کیا تھا. یہ آپ کا ڈرائیونگ لائسنس ہے. ناؤ بی آلویز سیف. کیا بات ہے. اور میرا بیٹا پتا ہے کیا کہتا ہے, انسپائرڈ بائی دا ماتا جی, وہ ڈرائیونگ لائسنس ہاتھ لیتا ہے اور کہتا ہے تھینک یو انسپیکٹر صاحب, کبھی کبھی ایکسیڈنٹ کروں گا. کیوں؟ کیونکہ ورائٹی بھی تو چاہیے. سوری ہاں, برا مت مانیے گا, میں آپ کو نہیں بول رہا ہوں, آپ کے دوارا آپ بہت اچھے ہیں, ایسے ہی جواب دیجئے گا, کیونکہ آپ کے دوارا کئیوں کا یہ جو کنسپٹ ہے نا کلیئر ہوتا ہے. میں آپ کو نمن کرتا ہوں کہ ایسے سوال پوچھئے. پلیز بتائیے دوستوں, سیفٹی از این آلویز فینومینا, خوشی از ناٹ این آلویز فینومینا, دکھ. کیوں پڑھائی کیا؟ سکھ کے لیے. کیوں شادی کیا؟ سکھ کے لیے. کیوں بچے پیدا کیے؟ سکھ کے لیے. لیکن مانیتا پتا ہے کیا, کبھی کبھی دکھ چلتا ہے. غلط ہے, ہم جو پریاس کر رہے ہیں اور جو ہماری مانیتا ہیں, یہی سب سے بڑی چنوتی ہے. اور مجھے بہت خوشی ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ آج سے 22 سال پہلے میں برہما کماریز میں آیا, میں بھی آپ کے ہی جیسے تھا, پورا کنفیوزڈ. اور ہم کو لگتا تھا, میں نے ایم بی اے کیا تھا اس وقت, آج سے 22 سال پہلے, اور مجھے کیا لگتا تھا پتا, مجھے سب پتا ہے. مجھے پتا تھا مارکیٹنگ کے بارے میں, لیکن جیون کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا. اور میرا یہاں آنے کی وجہ سے میرا پچھلے 22 سال اور آنے والا بھوشیہ بہت ہی ایزی, بہت ہی بیوٹیفل, بہت ہی سکھدائی. چنوتیاں ہیں وہ تو آئیں گی, دوسروں کے دوارا آئے گی, پرستھتی کے دوارا آئے گی, سواستھ کے کارن آئے گی, دھن کے دوارا آئے گی, اچھاؤں کے دوارا آئے گی. لیکن میں, آپ یہاں کے ایک ایک بھائی بہن کو دیکھیں, ان کے چہرے کو دیکھیں, کتنا کاریکرم چل رہا ہے یہ شانتی ون پریسر میں. آپ کے نیچے ہی ایک کاریکرم چل رہا ہے ہارٹ کے پیشنٹس کا, پلیز ایک بار ذرا دیکھ کے کسی سے بات کرنا. ہارٹ کی دھمنیوں کو بنا آپریشن کیے آپ نیچے کھلوایا جا رہا ہے. آپ بہت لکی ہیں, آپ ایسے کاریکرم میں آئے ہیں جہاں پیرللی وہ بھی کاریکرم چل رہا ہے. اور یہ کاریکرم کس نے انیشیٹ کیا تھا پتا ہے, وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے ڈاکٹر ستیش گپتا جی, ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام جی, جب وہ بھارت کے راشٹرپتی بھی نہیں تھے, وہ برہما کماریز کے ڈاکٹرز کے ساتھ اور ہمارے میڈیٹیشن کی بہنوں کے ساتھ مل کر کے 8 سال ریسرچ کیا ان سب ویکتیوں کے اوپر جن کا 100% بلاک, 90% بلاک, 80% بلاک. اور ڈاکٹر کلام کا ہائپوتھسس پتا کیا تھا, وہ برہما کماریز کے ساتھ کیوں جڑے, وہ ایسکاٹ ہاسپٹل, اپولو ہاسپٹل, کارڈیالوجسٹ کے پاس نہیں گئے, وہ پرجاپتا برہما کماریز ایشوریہ وشو ودیالیہ. وگیان اور آدھیاتم, وگیان بھی ستیتا کے آدھار پر چلتا ہے, آپ اپنے من گھڑنت کنسپٹ نہیں چلا سکتے. وگیان کا ہر نیم سب کے لیے سمان ہونا چاہیے اور سدا ہونا چاہیے, کبھی کبھی نہیں چلتا. اور اگر وگیان کا کوئی نیم قانون کسی ستھان پر نہیں چلتا تو اس کو مانیتا نہیں ملتی ہے. یس سر نو. گروتو, سوریہ کی کرنیں کسی ایک پردیش میں زیادہ اور کسی ایک پردیش میں کم, ایسا ڈسکرمنیٹ نہیں کرتا ہے. اگر اگے گا, بادل نہیں ہے تو اس ستھان پر اس کی کرنیں سب کے لیے سمان ہے. دیٹس دا لا آف نیچر. اور جہاں پرتھوی کا گولا ختم, سوریہ پیچھے, تو اندھیرا ہی ہوگا. وہ نیم ہے, آپ چاہو نہیں چاہو. ہاں آپ بلب جلا سکتے ہو لیکن سوریہ کی روشنی پراپت نہیں ہو سکتی, یہ ستیہ ہے. آپ لاکھ جتن کر لو, ایسا کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے. اسی طرح جیون کے بھی کچھ سدھانت ہیں, کچھ نیم ہیں, ان کو نہ جاننا, نہ پہچاننا اور نہ سویکار کرنا, یہ جیون کی سب سے بڑی چنوتی ہے. بس اس کو ہی ٹھیک کرنا ہے. اور پتہ ہے ڈاکٹر کلام کا ہائپوتھسس کیا تھا, جو آپ نے اتنا دیر زور زور سے کہا؟ انہوں نے کہا, مان لو مجھے 100% بلاک ہے آرٹریز میں, تو ڈاکٹر کلام پوچھتے ہیں, گریش بھائی یہ 100% بلاک کس نے کریٹ کیا؟ اگر آپ کو ہارٹ کی دھمنیوں میں بلاک ہے تو اگر میں آپ کو پوچھوں کس نے کریٹ کیا؟ بہت اچھا, کیا کانفیڈنس ہے آپ لوگ کو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے. تو ڈاکٹر کلام کہتے ہیں آپ میں اتنی قابلیت ہے کہ فیکٹری سیٹنگ کو بگاڑ سکتے ہو. فیکٹری سیٹنگ, موبائل خریدتے ہو تو فیکٹری سیٹنگ آتا ہے نا. پرماتما نے یہ شریر کو پتا نہیں جس نے بھی جیسے بنایا, 2 کڈنی, 1 لیور, 1 چھاتی, 1 ہارٹ, 2 آنکھ, یہ کس کی رچنا ہے؟ मैन्युफैक्चरर की, कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नहीं बनाया ये शरीर को, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर सेटिंग देकर भेजा था, और ये सेटिंग को बिगाड़ा किसने? वाह। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं आप में अपने फैक्ट्री सेटिंग को बिगाड़ने की काबिलियत है, तो क्या उसको सुधार नहीं सकते? 100% पॉसिबल है, बस इतना ही करते हैं हम। और बिगाड़ता पता है कौन है? मेरा मन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी संवेदनाएं। किसी का मोबाइल फोन बजे, ये करिए हार्ट को बर्बाद करिए, क्योंकि ऐसे ऐसे करोगे ना, उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो अपनी गलती सुधारेगा नहीं सुधारेगा, समझेगा नहीं समझेगा, मुझे नहीं पता, वो उसकी मर्जी। लेकिन एक चीज का गारंटी करता हूं, आपका ब्लड प्रेशर जरूर चढ़ेगा, आपका पैनक्रियास ताला जरूर लगाएगा, आपकी हार्ट और ब्लड प्रेशर सब खराब होने वाला है। प्लीज बताइए, किसी और की गलती से खुद का नुकसान उठाना ये बुद्धिमानी है या बेवकूफी है? अपने लिए बोल रहे हैं या किसी और के लिए? हाँ तो ठीक है, तो आज से बोलिए भाई साहब, मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा है। भाई साहब पूछ रहे हैं मेरे बेटे ने, जी 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 जी, भाई साहब पूछ रहे हैं मेरे बेटे ने ट्रैफिक रूल सब 2 साल मेहनत की, अब गाड़ी चला रहा, किसी और की गलती से मेरे बेटे को एक्सीडेंट होके नुकसान हो जाती, मृत्यु हो जाती, तो क्या करेंगे? हाँ उसको भी करना चाहिए था, वो उसके पापा की मिस्टेक, ठीक है। किसी और की गलती से मेरे नुकसान, मेरे बेटे का नुकसान, उस वक्त भी मेरे पास चॉइस है, शांत रहना, सिचुएशन को स्वीकार करना, और जो जिंदा है उनको संभालना, उनको मोटिवेट करना। किसी और के नुकसान, किसी और के जान जाने से मैं रोना शुरू कर दूं, मैं हताश हो जाऊं, मैं गाली दूं, मैं अपनी किस्मत को रूं, मैं परमात्मा को गाली दूं, सवाल पूछूं, वो जिंदा हो जाएगा, आपका नुकसान की भरपाई हो जाएगी? इस सत्य को समझना है। एक और सत्य आपको यहां पता चलेगा, मैं बस उसको टच कर रहा हूं, इस संसार में मृत्यु, मृत्यु सत्य है या नहीं? हम तो ऐसे रोते हैं जैसे कि बच जाएंगे या कोई वापस आ जाएगा। मेरे को प्रॉब्लम मृत्यु से नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मेरे को प्रॉब्लम आपके रोने से है, मेरे को प्रॉब्लम दुख से है, मेरे को प्रॉब्लम क्रोध से है, मेरे को प्रॉब्लम परेशानी से है, मेरे को मृत्यु से प्रश्न ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने भी शरीर छोड़ा, गौतम बुद्धा ने भी शरीर छोड़ा, श्री कृष्ण ने भी शरीर छोड़ा, तो श्री राम ने भी शरीर छोड़ा, तो जिसको मैं इस संसार में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, जिसके लिए मैं जीता हूं, मेरी मां, वो भी शरीर छोड़ेगी या छोड़ी है। वो पापा जिसके बिना मैं शायद ऐसा सोचता था कि पापा सदा मेरे साथ रहना चाहिए, वो भी एक दिन शरीर छोड़ेंगे, आप भी एक दिन शरीर छोड़ेंगे, मैं भी एक दिन शरीर छोड़ूंगा, ये सत्य है। इस सत्य को स्वीकार करना और ये सत्य को प्रॉब्लम बनाना, ये आपकी मर्जी है। लेकिन पता है हम रोते क्यों है किसी की मृत्यु पे? सब गलत मान्यताएं। घर में दादाजी की मृत्यु हो गई, बूढ़े उम्र से ही उन्होंने शरीर छोड़ा था, कोई दुख की बात नहीं, उम्र हो जाती तो भाई ठीक है, नेक्स्ट जर्नी। अब उनका पार्थिव शरीर को घर में रखा हुआ है, सब घर वाले आ जाए, छोटी बच्ची, बेटी की बेटी, पोती, सेकेंड क्लास में पढ़ने वाली, पता है वो क्या बोलती है मम्मी को? मम्मी, वो छोटी है ना, उसको इतना पता नहीं है ना, वो मम्मी को कहती है मम्मा मम्मा तुम क्यों रो रही हो? तो मम्मी पता बच्ची को क्या कहती है? बेटा दादाजी हमको छोड़ के चले गए। तो पता है छोटी बच्ची क्या बोलती है? लेटे तो है ना, ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे वो अपने कमरे में सोते हैं। जब कमरे में सोते थे तो कोई पूछता था दादाजी कहां है, तो बच्ची कहती दादाजी कमरे में सो रहे हैं, तो दादाजी तो यहां है, तो मम्मी कहती ना ना बेटा तुम नहीं समझोगी, दादाजी हमको छोड़ के चले गए। तो फिर बच्ची बोलती अरे मम्मी तुम क्यों रो रही हो लेटे? तब मम्मी उसको समझाती है, पता है क्या समझाती है? दादाजी है ना, छोटी बच्ची है ना, इसीलिए उस लेवल पर समझा रही है। मम्मी बच्ची को समझाती है दादाजी है ना ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, अप
अबाउ द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई. वो ट्विंकल ट्विंकल बनकर चले गए. बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, मरने के बाद घर वालों को पता चल रहा है कि डायमंड थे, क्योंकि जब तक जिंदा थे तो खाते नहीं थे, मानते नहीं थे, उनको कितना संभालना पड़ता था, बूढ़ा कब जाएगा पता नहीं. सवाल पूछूं, इसीलिए व्यक्ति रोता है, अज्ञानता की वजह से रोता है, अपनी कमी कमजोरी की वजह से रोता है. प्लीज बताइए, ऐसा कोई इंसान है इस संसार में जो कभी अपना शरीर ही ना छोड़े? हाँ, तो फिर रोते क्यों है? बहुत अच्छा, तो आप ही प्रॉब्लम है. आप मतलब स्वार्थ ही प्रॉब्लम है. और हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को गलत सिखा रहे हैं. क्या आपका बच्चा बोल सकता है मेरे माता पिता रॉक सॉलिड है, वो ना घबराते हैं, ना रोते हैं, ना परेशान रहते हैं. जब तक दादाजी जिंदा थे तब भी प्यार से मुस्कुरा करके एक अभिन्न अंग बना करके घर का वातावरण को खुशबू बनाकर जिया था, सम्मान पूर्वक दादाजी को रखा था, और मरने के पश्चात भी सम्मान है. आपका बच्चे को एक चीज पता चल जाएगा, हमारे घर में हर व्यक्ति को जिंदा हो या मृत्यु हो सदा सम्मान रहेगा. सम्मान क्रिएट करना हम बड़ों की जिम्मेवारी, वो छोटों के मन में उनको गलत सिखाने की जिम्मेवारी किसने दी आपको बताइए? मुझे प्रॉब्लम सत्यताओं से नहीं है, हमें मुझे प्रॉब्लम रोने से है, दुख से है. क्या चॉइस है हमारे पास बताइए? मुझे पता है किसी के घर में मृत्यु हो जाती है तो वो बड़ा ही भारी वातावरण होता है. उस वातावरण में आपकी इनर स्टेबिलिटी, आंतरिक शक्ति, वो तो दर्शाता है ना. तो हमारे पास दो चॉइस है, या तो सकारात्मक चॉइस या फिर नकारात्मक चॉइस. समस्याएं कोई भी रूप में आ सकती है. सर मैं खुद समस्या क्रिएट कर सकता हूं, मेरा कोई गलती नहीं है, सारा गलती सामने वाले का है. जैसे भाई साहब ने कहा, उसने एक्सीडेंट कर दिया, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हो. आपको उदाहरण दूं, एक गांव में दो घर थे आजू बाजू में, ठीक है, और एक घर वाला जो था वो क्या करता था, अपने आंगन का सफाई करता था, झाड़ू लगाता था, और उसका पूरा कूड़ा करकट वो टोकरी में भरता था और बाजू वाले के घर के दरवाजे के सामने डाल देता था और चला जाता था. और ये भाई जब दरवाजा खोले तो अ हीप ऑफ यू नो कूड़ा करकट, वो उसको बड़े अच्छे से प्यार से निकाल देता. दूसरा दिन फिर ये भाई पूरा कूड़ा करकट उसके घर के सामने, ये भाई फिर उसको झाड़ू लगा देता था. हर दिन ये ही उसका नियम था. 6 महीने के बाद मौसम बदली हुई, गर्मी का मौसम आया, ये पड़ोसी के घर के आंगन में बहुत बड़ा एक आम का वृक्ष था, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आम निकले, और जब वो पकने लगे तो ये भाई ने वो आम तोड़ा, टोकरी में भरकर इसके घर के सामने रख दिया. और इसने जब दरवाजा खोला और इसने देखा वो तोड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको समझ आ गया ये पड़ोसी ने मेरे घर के सामने आम रखा. उसको बहुत आत्मग्लानी हुई, बहुत बुरा लगा, कितना सज्जन पुरुष है, एक बार भी इसने मुझे कभी गलत दृष्टि से भी नहीं देखा, कभी बोला भी नहीं तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, क्या कूड़ा करकट डालते, ऐसे कोई मर्यादा होती है क्या, कभी उसमें लेके चिंता भी नहीं किया. और कितना सज्जन पुरुष, कितना महान, ओ गॉड, ही इज लाइक गॉड, देवत्व, देवता के गुण है इसमें, देवी गुण है. मैंने इसके घर में 6 महीना प्रतिदिन कूड़ा करकट डाला और ये मेरे यहाँ पे मीठे आम. उसको बहुत बुरा लगा, तुरंत भागा, ये पड़ोसी के घर को दरवाजा खटखटाया और बोला, भाई साहब आपके चरण भी पकड़ लू ना, माफी भी मांगू ना, तो भी मैंने अपनी गलती जितनी की ना उसको सुधार नहीं सकता. आप बहुत महान व्यक्ति, आप बहुत सज्जन पुरुष हैं, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है आपकी, आपको देखते हुए मुझे ऐसा अब महसूस हो रहा है कि आपके अंदर ईश्वर वास करता है, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. आपसे मिलकर मैं किन शब्दों में माफी मांगू, ऐसा कोई शब्द, आई एम सॉरी भी शायद फीका पड़ जाएगा जो मैंने किया. आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं. पता है ये व्यक्ति ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस व्यक्ति ने कहा, ना मैं महान हूं, ना मेरे अंदर भगवान वास करता है, आपको जो जो लग रहा है ना, मैं बहुत सज्जन पुरुष हूं, पुण्य हूं, ये हूं, वो हूं, वो आपकी मर्जी. बोला नहीं नहीं, ऐसा ही महान व्यक्ति ये कर सकता है, आप उसके घर में कूड़ा करकट डालो और वो आम डाले तो इतनी तो महान ही होना चाहिए। बोला मुझे नहीं पता महानता वहानता पुण्य और महान ये वो, मैंने क्यों आपके घर में आम रखे पता है क्यों? उसने कहा क्यों? बोला बहुत सिंपल है, जो जिसके पास होगा वो ही देगा ना। तुम्हारे पास क्या था? कचरा, वो ही दे रहे हो। वो तो मुझे ही नहीं दे रहे हो, हर व्यक्ति को तू कचरा ही दे रहा है। यहां से कचरा, यहां से कचरा, यहां से कचरा, कर्म का कचरा, ये तो स्थूल टोकरी भर का कचरा दे रहा था। आपसे आपके परिवार वाले क्या चाहते? कचरा। लेकिन आप देखिए आपके अंदर है क्या, जो होगा वही दोगे ना। नींबू को निचोड़ो तो उसमें से मीठापन नहीं आएगा, खट्टा रस ही आएगा। गन्ना को निचोड़ो तो उसमें से सिर्फ मीठा रस ही आएगा। मिर्ची को निचोड़ो तो तीखा ही लगेगा। नमक को निचोड़ो तो उसमें खारापन ही आएगा। सवाल पूछो, हे इंसान, आपको कोई जाने अनजाने निचोड़े? जो आएगा वो हैं आप। सिंपल। मैं ये आपको सुना रहा हूं किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए, क्योंकि ये मेरा जीवन है। दूसरों का जीवन हम बाद में बनाएंगे, पहले अपने को तो बना लें। और मुझे निचोड़ता हुआ देख करके फिर भी मिठास, आपका बच्चा बोलेगा मुझे पप्पा जैसे बनना है। ओ माय गॉड, ही इज रॉक सॉलिड, घबराता नहीं है। कितनी समस्या, लेकिन मेरा पापा सदा मीठा, मैं पप्पा आपके जैसे बनूंगा। आपने बना दिया उस बच्चे का जीवन। लेकिन वैसे ही विपरीत परिस्थितियों में, लेकिन आप निचोड़ते हुए खट्टा खारा नमकीन ये सब निकल रहा है, तो बच्चा बोलेगा शायद जिंदगी ऐसी ही है, सुख और दुख का खेल है। जब समस्या आएगी उसमें रोना धोना घबराना परेशान होना ये शायद प्रकृति का नियम है। हेलो, नहीं है। प्रकृति का नियम ये कहता है हर वस्तु अपना मूलभूत स्वाभाविक इंट्रेंसिक अपना गुण गन्ना मिठास ही छोड़ेगा। सवाल पूछो, गन्ने को मीठा, गन्ना मीठा ही होता है ना, किसने बनाया? आपको भी यहां पता चलेगा, आप जो सब यहां बैठे हैं ना, आप सब भी डायमंड हैं। आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, है। अब मैं गन्ना को मीठा बोलूंगा तो गन्ना खुश होगा क्या? बोलो, बोलना मेरे को क्या, मैं तो कुछ भी कर मिठास ही निकलेगा। तू गन्ने को गाली दे, गन्ने का सम्मान कर। What comes out of a sugar cane is a sweet juice. निंदा स्तुति मान अपमान समस्या सुख सब में आप डायमंड हैं। डायमंड के अंदर इतने गुण हैं, उसको पहचानो तो सही, उसको इस्तेमाल तो करो कॉन्शियसली डिलिबरेटली पर्पसफुली। बस इसी के लिए आपको निमंत्रण दिया है। आप अपना पारिवारिक जीवन आज से खुशहाल बनाए, मस्त रहे। और वो इस पर निर्भर नहीं करता है कि सामने वाला कैसा है या बाकी संबंधी कैसा है, वो इस पर निर्भर करता है कि मैं कैसा हूं। बाहर बदबू आ रही है, आप घर में अगरबत्ती जलाते हो, तो प्लीज बताइए क्या अगरबत्ती जलते समय वो गोबर को गाली देगा? बोलेगा मेरा एक ही धर्म है, खुशबू फैलाना, खुशबू फैलाना, खुशबू। ऐसे ही हमारा भी धर्म है, किसी भी प्रकार की चुनौती में आपने एग्री किया, मेरे जीवन में कैसी भी समस्या हो चुनौती हो, मेरा दुख और सुख का कारण मैं हूं। तो आज से हम सब क्या बनेंगे? सुखी बनेंगे। बने, 5 मिनट है मेरे पास, ठीक है। इसके लिए आत्मज्ञान, आप जब आत्मा का क्लास अटेंड करेंगे ना, तो देखना ये शरीर असत्य है, क्योंकि सत्यता की कुछ परिभाषाएं हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी ऑलवेज रिमेन्स, उसके भान में रहिए, उसको वो करते हुए अपनी जिम्मेवारियों को अच्छी रीति से निभाएं। करें एक्सरसाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये एक्सरसाइज, चॉइस है। दोनों हाथ ऐसे करें, सब लोग करें, बच्चे भी करें, छोटे बच्चे बड़े बच्चे भी करें, वेरी गुड, वृद्ध बच्चे भी करें। या ये क्लास ही है ना, ऐसा क्लास कहां मिलेगा जब पूरा परिवार ही बैठा हुआ है, छोटा भी बड़ा भी। ये दोनों उंगलियों को ओठों के किनारे रखें, क्या लग रहे हैं आप लोग? गुड, ठीक है। ऊपर की ओर थोड़ा धक्का लगाएं, हाँ, मुस्कुराएं, वेरी गुड। हाँ ऐसे ही रखें, मुस्कुराता हुआ रखें थोड़ा देर के लिए, ताकि आपका फोटो कैमरा में आ जाए। हाँ देखिए बहुत अच्छा, क्या लग, महसूस करिए मैं खुश हूँ। ठीक है, चेहरा ऐसे ही रखते हुए हाथ को थोड़ा थोड़ा नीचे रखें, चेहरा वैसे ही रहने दें। हाँ चेहरा मुस्कुराता हुआ रखकर हाथ नीचे करें, वेरी गुड। एक छोटा सा निवेदन है, दिल्ली पहुंच करके उसके एक दिन बाद तक, तब तक ऐसे ही रहिए। आप अपने घर पहुंचना, घर पहुंच करके अपने बेटे को कहना, बेटा थोड़ा टीवी बंद करके पढ़ाई कर ले, हाँ कल तेरी परीक्षा है। तो जब आप ऐसे मुस्कुरा के कहोगे ना, आपका बच्चा आपको ऐसे देखेगा ऊपर से नीचे तक, बोला ये तो कुछ गड़बड़ हो गया, जब मम्मी यहां से गई थी माउंट आबू तब तो नॉर्मल थी, और जब वहां से वापस लौटी है लगता है एक दो ढीला है, और ये मुस्कुरा रही है, गुस्सा नहीं करती। और एक दिन आपको मुस्कुराता हुआ, कुछ भी हो, कोई माने आपकी बात ना माने आपकी बात, अपमान करे आपको, बुरा भला बोले, उन आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपको आरोप प्रत्यारोप करे, उस वक्त भी मुस्कुराइए। पता है ऐसे मम्मी ऐसे पप्पा ऐसे भाई ऐसे बहन को देखकर आपके बाकी घर वाले बोलेंगे, अगली बार जल्दी माउंट आबू जाना है। क्योंकि आपके माउंट आबू जाने से, आपके सुधरने से फायदा हमको हो रहा है। अरे आप अच्छे बन रहे हो, इसीलिए तो घर वालों का निर्माण किया ना, इसीलिए तो घर परिवार माता पिता सास ससुर बच्चे भाभी बहनोई, क्यों आपसे सुख प्राप्त करना चाहते हैं, और वो सुख का आधार आपका स्वतंत्र निर्णय है कि मैं आज से सदा खुश रहूंगा, और वो खुशी का आधार मेरा चॉइस है। मुस्कुराएंगे पक्का 100%? चलिए आप घर पहुंचे, जिस दिन घर, उदाहरण दे देता हूं, आप घर ही जा रहे हैं ट्रेन से फ्लाइट से, आप अपने घर जा रहे हैं, दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही हैं कितना अच्छा ट्रैफिक है, बस ऊपर से ओवरटेक करना ही बचा है, बाकी व्यक्ति कहीं से भी आ सकता है। ठीक है ना, इतना डिसिप्लिन है दिल्ली का ट्रैफिक, मतलब दिल्ली का नहीं पूरे भारत का ही ऐसा हाल है। अब आप गाड़ी चला के जा रहे हैं, आपकी गाड़ी है पर्सनल गाड़ी है, और पीछे से आप घर पहुंचने के पहले एक दूसरे गाड़ी ने आके टक्कर मार दी, तो पता है आपको क्या करना है? ये सोच समझ कर आपने ऐसा किया होना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसे करके आपके सब घर वाले घर बैठे हुए हैं, आपका बच्चा देखना चाहिए आपको कि मेरे डैडी कैसी भी चैलेंज में, ओ माय गॉड मेरा पप्पा हीरो है, क्या चॉइसेस हैं उसके, मुझे इनके जैसा बना। स्वामी विवेकानंद गांधी जी महान महान होकर गए ना, उसकी झलक आपके 24 घंटे के व्यवहार में झलकना चाहिए, तभी वो कहेगा माय डैडी इज वंडरफुल। और है ना, मुस्कुराना, गाड़ी का दरवाजा खोलना, पीछे वाले ड्राइवर के पास जाना, वो थोड़ा घबराया हुआ होगा, सहमा हुआ होगा, पता नहीं अब आप क्या क्या महावाक्य उच्चारण करने वाले हैं, ठीक है ना, और वो बड़ा डर डर के विंडो पेन को नीचे करता है, उतरता भी नहीं है गाड़ी से, लोग तो हाथापाई कर जाते हैं, बड़ा डर डर के सहमा हुआ वो विंडो पे नीचे करता है। आप क्योंकि अब आप डायमंड हैं, पहले जैसे नहीं है, आप सदा चमकते हुए प्रेशियस हैं, वैल्यूएबल है, अति मूल्यवान है, खुद के लिए भी, समाज के लिए भी, देश के लिए भी, सर्व के लिए भी, क्योंकि आप डायमंड हैं। आप पीछे वाले ड्राइवर को कहना पहला महावाक्य मुस्कुराते हुए, तो उसको कहना भैया आपको चोट तो नहीं लगी, उसको लगेगा जैसे कि आप धरतीवासी ही नहीं हो, मैंने इनका टक्कर मारा, लाइक अ डायमंड इन द स्काई, ये धरतीवासी ही नहीं है, आप बड़े ऊंचे, आपकी जो श्रेष्ठता है ना, आपकी जो कर्म की जो लेवल है ना, वो ऐसा लगेगा कि आप साधारण ही नहीं है। दूसरा महावाक्य बोलना, उसको कहना मुस्कुराते हुए भैया क्या टक्कर मारी है आपने, आहा अब तो कंफर्म हो जाएगा कि आप धरतीवासी नहीं हो, अरे मैंने इनका नुकसान पहुंचाया और ये बोलते क्या टक्कर मारी है। तीसरा महावाक्य, डायमंड जैसे हैं आप, तीसरा महावाक्य आपके मुखारविंद से निकलना चाहिए, और ये कहने से ही हमारा जो ईगो है ना, क्योंकि हमारी तो कोई गलती नहीं है, इसकी वजह से गलती हुई है, उसको शीतल जल प्राप्त होता है। तीसरा महावाक्य, पीछे वाले ड्राइवर को मुस्कुराते हुए कहना, भैया तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा, इतना ही तो कहते हैं ना, इतना ही तो कहना है ना। सवाल पूछूं, यही कहने के लिए आपके पास दो चॉइस है, या तो प्यार से मुस्कुराते हुए कंप्लीट कंट्रोल, क्यों, क्योंकि मैं वो दूसरा पड़ोसी हूं जिसके घर में अच्छे अच्छे मीठे आम है, हम वही देते हैं जो मेरे पास है, और हम भूल गए हैं कि मैं डायमंड समान हूं, और हमने ये सब गलत स्वभाव संस्कार को देना शुरू कर दिया है। और आपका बच्चा ये सब देख रहा है, पप्पा हीरो है, और उसको कहना, भैया आपको मैं नहीं छोड़ूंगा, पुलिस कंप्लेन कराऊंगा, FIR दर्ज कराऊंगा, पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी मेरे मित्र हैं, जो सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज हैं वो भी मेरे मित्र हैं, मरते दम तक तुझे नहीं छोड़ूंगा, पैसा वसूल करूंगा, चलें पुलिस स्टेशन, रस्ते में 10 रुपए की चाय भी पियेंगे, पैसा तो देगा, मतलब पूरे से कट लूंगा। सवाल पूछूं, ऐसी परिस्थिति में तिल मिलाना, गाली देना, आंखें बड़ी करना, उसको गाली गलौज करना, छोड़ूंगा नहीं, तो समझता नहीं है, तेरे को गाड़ी चलाना नहीं आता है, तेरे को इंडिकेटर नहीं नजर आता। सवाल पूछूं, ऐसा बोलने से क्या फायदा, क्या वो पैसा दे देगा? गारंटी है, क्या प्यार से बोलने से वो पैसा दे देगा? एक चीज का गारंटी है, आपको हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लड प्रेशर, आपका आने वाला भविष्य और सुखदायी और ब्यूटीफुल हो जाएगा। हो सकता है, पक्का? भाई लोगों का एग्जाम्पल दे देता हूं, आपको यहां आना था, यहां से ही कहीं किसी कार्यक्रम में शादी पे जाना, किसी के परिवार में, आपने अपने मैनेजर को छुट्टी का एप्लीकेशन दिया, और आपका मैनेजर कहता है आपको छुट्टी नहीं मिल सकती है, आउट। तो पता है आपको क्या करना है? लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, पता है हम साहब को क्या कहते हैं? सर सर प्लीज सुन तो लीजिए सर, बहुत अर्जेंट है सर। साहब बोलते बिल्कुल नहीं, अभी ईयर एंडिंग चल रहा है, यहां सांस लेने की फुर्सत नहीं, आपको छुट्टी मांगना भी अपने आप में गलत है, यू शुडंट इवन थिंक अबाउट अ लीव, यू नो हाउ मच पेंडिंग वर्क। फिर भी आप कहते सर सुन तो लीजिए, उन्होंने कहा बाहर जाइए प्लीज गिरीश, छुट्टी का सवाल ही नहीं उठता। और जैसे ही हम सर के कमरे से बाहर, क्या कर रहे हैं, क्या बात है, जो होगा, छुट्टी मिले या ना मिले, छुट्टी जब तक मेरे साहब नहीं देंगे तब तक मैं पूछता रहूंगा या ना भी पूछूंगा, लेकिन एक चीज नहीं छोड़ूंगा, बस इतना ही करना है। अभी आप घर जाएंगे यहां से, जितने भी यहां बहुएं बैठी हैं, जैसे ही घर पहुंचे आपकी सासू मां ने दरवाजा खोला, AK-47 AK-56 बोफोर्स गन निकाल दिया, और कहती बस हो गया, बस तेरे को मेडिटेशन सीखना आ गई तू, हमारा तो कोई ख्याल ही नहीं रखता, 3-3 दिन से हमारा कोई खाना पीना नहीं, झाड़ू लगा भी पहले। तो पता है आपको क्या करना है? ऐसे नहीं करना, अगर उनके सामने ऐसे हाथ से करोगे तो परमानेंटली बाहर हो जाओगे, ठीक है, पर अंदर ही अंदर खुश रहना, हाथ से नहीं करना, मुस्कुराकर अपनी सासू माँ को कहना, माता जी थक गई हूं, ट्रेन में भी थोड़ा सा नींद डिस्टर्ब हो गया था, पहले चाय पीऊंगी, 2 घंटे आराम करूंगी, रिफ्रेश होने के बाद कल झाड़ू लगाऊंगी। संभव है? नहीं संभव है, झाड़ू तो लगाना ही पड़ेगा। भाई लोग बोल रहे हैं, लगता है आप लोग ही लगाते हो, ठीक है, बहनें तो बोल ही नहीं रही, शायद दिल्ली में भाई लोग लगाते हैं, झाड़ू तो लगाना पड़ेगा ना, तो झाड़ू लगाने के लिए आप थके हुए भी हो, रात को सोए भी नहीं हो, झाड़ू को हाथ में लेना और कहना आहा क्या झाड़ू है, ओहो हो, और फिर झाड़ू लगाना, क्या सफाई हो रही है मेरे से, आहा क्या दर्द। पता है मैं क्या कह रहा हूं? झाड़ू लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए, एक चीज को नहीं छोड़ना। लेकिन पता हम झाड़ू कैसे लगाते,
بس میں ہی جھاڑو لگاؤں, کیا دو دن چلی گئی کتنا برس رہی ہے کہ وہ نہیں چاہتے بالکل وہ لوگ,
اور جھاڑو بھی لگا رہے اور پریشان ہو کر دکھی ہو کے فرسٹریٹڈ ہو کر. بس اتنا کرنا ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے. چلیے زور سے تالی بجائیے اپنے گھر والوں کے لیے. پتا ہے کیوں تالی بجا رہے؟ کیونکہ اب آپ گھر پہنچتے ہی ساتھ ڈائمنڈ دکھنے چاہیے آپ سب. ایڈوانس میں تالی بجا رہے اپنے لیے, ٹھیک ہے, اپنے لیے ایک بار تالی بجائیے. یس, ہم یہاں سے گنا سمان میٹھے بن کر کے جائیں گے, کوئی کتنا بھی نچوڑے مٹھاسی نکلے گا. ٹھیک ہے, بس جاتے جاتے ایک مہاواکیہ آپ کو سناتا ہوں, کسی شاعر نے بہت سندر کہا ہے, زندگی تجھ سے ہر قدم پر سمجھوتا کیوں کیا جائے. کبھی کبھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے نا, سامنے والا غلط ہے پھر بھی آپ کو جھکنا پڑتا ہے, چپ رہنا پڑتا ہے, سہن کرنا پڑتا. زندگی تجھ سے ہر قدم پر سمجھوتا کیوں کیا جائے, شوق زندگی کا ہے مگر اتنا بھی نہیں کہ مر مر کے جیا جائے. زندگی تجھ سے ہر قدم پر سمجھوتا کیوں کیا جائے, شوق زندگی کا ہے مگر اتنا بھی نہیں کہ مر مر کے جیا جائے. جب جلیبی کی طرح الجھ ہی رہی ہے اے تو زندگی, سب کچھ گڑبڑ ہے الجھ رہی ہے. جب جلیبی کی طرح الجھ ہی رہی ہے اے تو زندگی, تو کیوں نہ تجھے چاشنی میں ڈبو کر کے ہی مزہ لیا جائے. ہو سکتا ہے, تو کچھ بھی ہو, کوئی آپ کی زندگی کو کتنا جلیبی کی طرح گھمائے, آپ کو سدا کہاں رہنا ہے, چاشنی کے اندر. ٹھیک ہے, یہ گیان, یہ سمجھ اور یہ محسوستا اور یہ فالو ہم سب کریں گے. ایک منٹ میڈیٹیشن کریں, سیدھے بیٹھے. اور دوستوں, وہ جو چاشنی کے اندر جانا مانا ہی میڈیٹیشن کرنا ہے. باہیہ جگت کی ہر تکلیف, ہر وکتی, ہر کٹھنائی, ہر وگن کو بھول جائیے ابھی, اور محسوس کریے کہ میں اتی میٹھا ہوں, میرا ارد گرد میٹھا ہے, میں میٹھا بنتے. جب تک جلیبی کو چاشنی میں نہیں ڈالو گے نا, وہ جلیبی نہیں کہلائے گا. آپ اور میں تب تک ڈائمنڈ نہیں بن سکتے ہیں جب تک میں ایکانت میں بیٹھ کر ڈائمنڈ کی محسوستا, اپنا سوامان, اپنا سیلف ریسپیکٹ, اپنا سیلف کانفیڈنس کو خود نہیں بناتا. ہلکے ہو کر کے بیٹھے, الرٹ ہو کر کے بیٹھے, پیٹھ کو اسٹریٹ کریں. آپ کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے, بس محسوس کرنا ہے. اپنے آپ کو اس انوبھوتی میں بٹھائیں کہ اگلا کچھ شن میں سویم کو پالش کرنے والا ہوں. میں ہوں ڈائمنڈ, لیکن تھوڑا سا پالش کی کمی ہے, اس کی چمک دھندلی ہو گئی ہے. میں جو ہوں, جیسا ہوں, ایشور پرماتما کی شریشت رچنا ہوں, شدھ ہوں, مہان ہوں, شکتیشالی ہوں, گنے کی طرح اوریجنلی میٹھا ہوں, سکھ سوروپ ہوں, شانت سوروپ ہوں. یہی میرا اوریجنل نیچر ہے. شاید میں اسے بھول گیا تھا. میں اتی بھاگیشالی ہوں کہ آج مجھے پناہ اپنے اوریجنل سوبھاؤ کے بارے میں پتا چلا. یہی میرے اندر ہے, اور آج سے ہر ویکتی کو میں یہی سکھ شانتی آنند دوں گا. میں اپنے پریوار سے پیار کرتا ہوں, اپنے کاروبار کے شیتر میں جو بھی لوگ ہیں انہیں بھی پیار اور سمان کرتا ہوں. جب میں ان کے ساتھ رہ کر کے کاروبار یا جیون چلاؤں گا تو بھلے وہ نیگیٹو بھی ہو جائیں, لیکن میرے من میں ان کے لیے سدا سمان, سدا پیار, سدا شبھ بھاونا,
क्योंकि यही मेरे अंदर है, यही मेरी विशेषता है। और ये देखकर सुनकर रचयिता परमात्मा आप सबके लिए कह रहा है, हे मेरे अति मीठे प्यारे लाडले बच्चों, मुझे नाज है तुम पर, मैं गर्व करता हूं तुम बच्चों पर, मैं आज अपनी सर्व शक्तियां तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं, सदा विजयी भव। ओम शांति। धीरे से आंखें खोलें, अपने हाथ को अच्छी तरह रब करें, पूरे चेहरे को लगाएं, माथे को, आंख को, गाल को, नाक को, मुख को अच्छी तरह लगाया सबने। गुड न्यूज, फेयर एंड लवली लगा लिया, सदा फेयर रहना और सदा सदा लवली, ठीक है। चलिए, आप सबका भविष्य बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो, आप अपने परिवार सहित बहुत स्वस्थ रहें, आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, इन शुभ आशाओं के साथ थैंक यू। ओम शांति।